ओम ओम ओम। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिव भक्ति से ओतप्रोत शिवानंद लहरी, इस स्तोत्र के आधार पर विचार चल रहा है। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित सायंकालिक विशेष प्रवचन की श्रृंखला, 13 दिवसीय यह श्रृंखला का आज चौथा दिवस, चतुर्थ श्लोक अभ्यास के लिए चौथा श्लोक। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम् हरि ब्रह्मादीना मपि निकट भाजाम असुलभम चिरम याचे शंभो शिव तव पदां भोज भजनम स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये सकुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्रे वा स्तुति नटन हास्ये स्वचतुरः कथम राज्ञां प्रीतिर् भवति मयि कोऽहं पशुपते परम पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो घटो वा मृत्पिण्डो प्यणुरपि च धूमोऽग्निरचल पटो वा तन्तुर्वा परिहरतिं घोरशमनम् वृथा कण्ठक्षोभम् वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजं शम्भोर्भज परमसौख्यं व्रजसुधी मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्र फणितौ करौ चाभ्यर्चयां श्रुतिरपि कथा कर्णन विधौ तव ध्याने बुद्धिर् नयन युगलं मूर्ति विभवे परग्रंथान कैर्वा परम शिव जाने परमत सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदः न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम् हरि ब्रह्मादीना मपि निकट भाजाम असुलभम् चिरं याते शम्भो शिव तव पदाम्भोज भजनम् सहस्रं वर्तन्ते। आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे शिवा हे शंभो, सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदाः। क्षुद्र व्यक्तियों के लिए, क्षुद्र फल देने वाले संसार में बहुत व्यक्ति हैं और मेरे दृष्टि में वे लोग भी क्षुद्र ही हैं। ये वाक्य पर ध्यान देना, क्षुद्र व्यक्तियों के लिए क्षुद्र फल देने वाले संसार में बहुत से क्षुद्र व्यक्ति भी हैं, लेकिन न मन्ने स्वप्ने वा, मुझे उन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया वो क्षुद्र फल की कामना स्वप्न में भी नहीं होती है। जागृत में होने की तो बातें छोड़ दो, तदनुसरणम तत्कृत फलम। फिर तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव पूछे शंकराचार्य जी से, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूं महाराज, हरि ब्रह्मादीनाम अपि निकट भाजाम असुलभम। आपकी चरण की सेवा करने का अवसर विष्णु और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होता। इंद्र वरुण की तो बातें छोड़ दो और संसारियों की तो और बात छोड़ दो, जिसकी चरण सेवा करने का अवसर हरि ब्रह्मा आदि को भी प्राप्त नहीं है, मैं तो उसी चरण की सेवा करना चाहता हूं। बस वो चरण है, चिरम याते शंभो। हे शंभो, मैं तो यही चाहता हूं कि दीर्घ काल तक, कब तक? जब तक स्वरूप स्थिति न हो, चिरम संसार में मुझे यही दो चीज चाहिए। एक तो मेरा लक्ष्य है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति की तरह शिवम वेद शिवैव भवति, आपको जानने वाला आप ही हो जाए, आपकी और मेरी पृथक अस्तित्व न रहे रंच मात्र भी। और यदि आपके स्वरूप मोक्ष, स्वरूप उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होती है, किसी कारण से आपसे भिन्न रहना पड़ेगा, तो जब तक भिन्न रहूंगा तब तक मैं यही चाहता हूं कि आपके तव पदाम्बोज भजनम, नित्य निरंतर आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। या तो आपसे अभिन्न हो जाऊं, आपसे भिन्न का मेरा अस्तित्व न रहे, जो वेदांत दर्शन का सिद्धांत है, और यदि अलग रहता हूं तो हमेशा आपकी सेवा, चरण की सेवा करने की मेरी इच्छा है। चिरम याते, इसके अलावा मेरी किसी और कोई इच्छा नहीं। अरे भाई, जब तक संसार में रहेगा, व्यवहार में तो सभी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तुझे जब तक शरीर रहेगा, प्राण रक्षा के लिए भोजन की तो आवश्यकता पड़ेगी, और उस भोजन की याचना भिक्षा तुझे करना हो करना पड़ेगा, और भिक्षा की याचना करने के लिए तो संसार में गली मोहल्लों में तुझे जाना ही पड़ेगा, और यदि किसी से कुछ चाहिए तो उनकी प्रशंसा प्रशस्ति भी करनी पड़ेगी। संसार में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, कहते हैं प्रहलाद का पौत्र, क्या नाम था प्रहलाद का पौत्र? बलि था, पुत्र था विरोचन, और विरोचन का पुत्र बलि, पौत्र, और हिरण्यकश्यपु का प्रपौत्र। कहते हैं कि उसने बड़ा भारी यज्ञ किया, क्योंकि तीनों लोग उसके अधीन था। अब विचार करो, तीनों लोक बलि के अधीन था तो शिव कहां रहे होंगे? तीनों लोक का वो राजा था तो शिव कहां रहे होंगे? तो शिव भी तो उसी के अधीन रहे कि नहीं? अरे भाई, शिव तीन लोक से परे हैं भाई, हाँ। शिव तीन लोक से परे होने के कारण बलि ने तो तीन लोक की शासन अपने हाथ में ले ली थी, तीन लोक का मालिक था। शिव तो तीन लोक से भी परे है ना, इसीलिए बलि के साम्राज्य के अंतर्गत आधीन में शिव नहीं है। ये बात अलग है कि शिव का, बलि का साम्राज्य भी शिव का ही है, लेकिन बलि केवल तीन लोक का साम्राज्य है, मालिक है, लेकिन भगवान शिव तो अनंत लोक का मालिक है। इसलिए शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा? देवताओं को फर्क पड़ा। फर्क किसको पड़ा? देवताओं को फर्क पड़ा। तब उन लोगों ने षड्यंत्र किया, हाँ, भगवान विष्णु के पास गए, महाराज हमारा राज्य जो है बलि ने कब्जा कर लिया, और तीनों लोग बलि ने कब्जा कर लिया। परिणाम यह हुआ कि हमको रहने का कोई ठिकाना नहीं और असुरों के राज्य में रहना पड़ रहा है। उसके कहे अनुसार हमको अनुशासित होकर काम करना पड़ रहा है। इसलिए आप कृपा करो, हमें तीनों लोक की राज्य की आवश्यकता नहीं है। पांडवों ने कहा था ना, हमको पूरा हस्तिनापुर के सिंहासन नहीं चाहिए। क्या कहा था? हम पांच भाई हैं, छोटा हस्तिनापुर के एक कोने का पांच गांव दे दो, हम उसी में हम गुजारा कर लेंगे, पूरा हस्तिनापुर का सिंहासन हमको नहीं चाहिए। दुर्योधन उस साम्राज्य का राज्य करता हो तो करे, हमको राज्य भोग की कोई आकांक्षा नहीं है। ये प्रस्ताव दुर्योधन के सामने गया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। हम उनको पांच गांव की बात छोड़ दो, एक सुई रखने बराबर की भी जगह नहीं देंगे। इसी तरह देवताओं ने विष्णु को कहा, महाराज तीनों लोक की हमें आवश्यकता नहीं है। वेद ने, शास्त्र ने, आप लोगों के अनुशासन ने हमारे लिए जिस भूमि की, जिस लोक की परिकल्पना की है, द्युलोक, हमको वही चाहिए। बस स्वर्ग हमको प्राप्त हो जाए, बाकी भूलोक और पाताल आदि सब जिसकी है वो भोगे, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमको हमारा राज्य चाहिए। क्या करें महाराज? अब लड़ने जाते हैं तो बलि उसी का भक्त है, तो अपने भक्त से क्या लड़े? तो कहते हैं उसी समय वह यज्ञ कर रहा था, भगवान ने विचार किया कि जाते हैं, यज्ञ में दीक्षा लेकर बैठा है तो यज्ञ की पूर्णता दान करने में ही है, तो हम ब्राह्मण का रूप धारण करेंगे, कुछ मांगेंगे और देगा वो, कहेगा कि क्या चाहिए तुमको, तो हम मांग लेंगे और तुम्हारा राज्य हम तुमको दिला देंगे, तुम चिंता मत करो। तो भगवान विष्णु ने नाटक किया, हम लोगों को पता ही है ना, आप लोगों के सामने किया है ना, हैं? सामने किया, हाँ, नाटक किया उन्होंने, बावन बन गए वो। उनका नाम बावन क्यों हुआ? कहते हैं उंगली से नापो तो केवल बावन उंगली, इतनी उनकी हाइट थी। कितना? बावन उंगली, चार आठ बावन हाइट, हाइट कितना हुआ होगा, हाँ इतने थे वो, छोटे से थे। तो वो चले गए और बलि ने कहा कि अच्छा ब्राह्मण बालक तुम क्यों आए हो। बोले हमने सोचा कि तुम यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़े मालिक हो तीनों लोक की और हम ब्राह्मण हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी कोई निजी भूमि हो और जहां हम आसन बिछाएं और गायत्री का अनुष्ठान करें, क्योंकि दूसरे की भूमि में यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो जमीन जिसकी है अनुष्ठान का आधा फल तो जमीन वाला ही ले जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा अनुष्ठान शुद्ध हो, पूर्ण हो, इसलिए हमको थोड़ा जमीन दे दो। बलि ने कहा कि कितनी चाहिए? नहीं नहीं हम बड़े संतोषी हैं, हम तो द्वापर युग के ब्राह्मण हैं, कलियुग के नहीं। कृष्ण किस युग के ब्राह्मण थे बलि के सामने? हैं, द्वापर युग के ब्राह्मण थे ना, तो कृष्ण माने कृष्ण भगवान नारायण जो कहो, बलि तो द्वापर युग का था। तो हम ब्राह्मण द्वापर युग के ब्राह्मण है, कलियुग के नहीं है। बहुत थोड़े में संतोष करते हैं, हमको तीन पग जमीन दे दो। बोले और ज्यादा मांग? हमारा तो तीनों लोक का साम्राज्य है, तीन पग क्या मांगता है? गंगा जी के पास जाकर केवल तीन बूंद पानी लेना कोई समझदारी है क्या? भरो बाल्टी जितना भरना हो। भगवान ने कहा कि नहीं, लोभ पापस्य कारण, हमको उतना ही है। जितने संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, जितना कम हो उतना ही सुखी और जितना ज्यादा हो उतना ही दुखी। सांसारिक पदार्थों के बारे में ये बिल्कुल सत्य घटना है। सांसारिक पदार्थों का जितना ज्यादा संग्रह होगा उतना ही ज्यादा दुख होगा और सांसारिक पदार्थों का जितना कम प्रयोग होगा, उपयोग होगा, उतना ही आनंद, उतना ही सुख होगा। भगवान ने कहा कि हमको तो तीन पग हो गया काम, और क्या, हमको तो भजन करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तीन पग ले लो। और भगवान ने अपने तीन पग से सब कुछ ले लिया और ले जाकर किसको दिया? देवताओं को दे दिया, ले वो तुम्हारा है, तुम ले लो महाराज आपके लिए। बोले हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। राजा बलि क्या था? वह तो क्षुद्र जीव है। राजा बलि हालांकि अन्य साधारण जीवों के दृष्टि से वो बड़ा महान हो सकता है, लेकिन भगवान और शिव के सामने राजा बलि तो एक क्षुद्र जीव है। और राजा बलि जो देगा वो सब क्षुद्र ही तो हैं। पृथ्वी और पृथ्वी लोक का जो भी वस्तु हैं वो सब क्षुद्र ही तो हैं, स्वर्ग स्वर्ग के पदार्थ। इसलिए तो उपनिषद ने कहा है, यद्यथे ह कर्मचीत लोकक्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्यचीत लोकक्षीयते। अपरोक्षानुभूति में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं निर्मल वैराग्य का लक्षण, ब्रह्मादि स्थावर पर्यंतम अनित्य भोग वस्तुनि, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक पर्यंत सारे लोक लोकांतर के जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अनित्य वस्तु है, क्योंकि वह भोग्य है, भोक्ता के द्वारा भोग्य है। किसी भोक्ता के द्वारा जो भोग्य होगा वो भोग्य क्षुद्र ही होगा, अनित्य होगा। यथैव काकविष्टायाम, जैसे एक मनुष्य को एक तरफ रसपुरी रख दो और एक तरफ कौवे का विष्टा रख दो तो पहले कौन खाएगा? कौवे का विष्टा खाएगा कि रसपुरी खाएगा? है, कौवे के बिस्टा को देखना भी नहीं चाहेगा, खाएगा है। यथैव काकविष्टायाम, यह अपरोक्षानुभूति का श्लोक है। तद ही वैराग्यम तद ही निर्मलम, जब किसी को जब इस प्रकार की दृष्टि बनती है, ब्रह्मादि स्थावरांतम, जितनी भी भोग्य वस्तुएं ये सब अनित्य हैं, कैसे तो बोले यथैव काकविष्टायाम, वो कौवे के विष्टा के प्रति मनुष्यों की जो दृष्टि बनती है वैसे ही दृष्टि भोक्ता को इन पदार्थों में बन जाए तब वो निर्मल वैराग्य कहलाएगा, तभी वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी कहलाएगा। तब बलि एक क्षुद्र राजा है, ठीक है, हमने उस दिन प्रवचन में कहा था ना, विराट के सामने हम तो क्षुद्र हैं, कुछ भी नहीं है, भले ही हमारे शरीर के जीव कण रक्त कणों के जीवों के सामने हम विराट हैं, हमारे जो मुख में कफ निकलता है उसमें कितनी जीव हैं, बैक्टीरिया हैं कि नहीं, उनके दृष्टि में तो हम विराट हैं कि नहीं, बोलो है? उनके लिए तो हमारा तो शरीर तो क्या, तीनों लोक हैं, 14 भुवन है, है? उन जीवों के लिए हमारा शरीर तो 14 भुवन है, वो 3 लोक 14 भुवन एक ब्रह्मांड है, उनके सामने हम भले ही महान हों लेकिन विराट के सामने तो हम क्षुद्र हैं कि नहीं। इसी तरह परमात्मा भगवान शिव के सामने तो जितने भी बलि हो चाहे कोई हो वो सब क्षुद्र जीव हैं, और वो जीव खुद ही क्षुद्र हैं, तो वो जिन राज्यों का जिन वैभव का भोग कर रहे हैं वो भी शिव जी के दृष्टि में तो क्षुद्र ही हैं, और शिव जी की दृष्टि में यदि क्षुद्र हैं तो असली शिव भक्त के दृष्टि में भी वे सब क्षुद्र ही हैं। शंकराचार्य कहते हैं इस संसार में सहस्रम वर्तन्ते जगति, जगत में हजारों हैं विबुधा, बड़े समझदार हैं, बड़े दाता हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्षुद्र फलदा, तुच्छ फल देने के लिए तो हजारों हैं, सांसारिक भोग्य पदार्थ प्रदान करने वाले तो बहुत मिलते हैं, हाँ संसार में कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज मेरे सामने तो मेरे लिए तो उन सब राजाओं के द्वारा दिया गया पदार्थ बिल्कुल तुच्छ है, उनके उन राजाओं को उन दाताओं को और उनके दिए हुए पदार्थों को मैं तो स्वप्न में भी उसकी कामना नहीं करता, जागृत में कामना करने की तो कोई बात ही छोड़ दो। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणम तत्कृत फलम, न उनकी स्तुति करने जाऊंगा मैं, न उनके द्वारा दिए गए पदार्थ की आकांक्षा करूंगा। फिर तुम क्या चाहते हो? हरि ब्रह्मादीनाम, मैं तो वो चाहता हूं जो विष्णु और ब्रह्मा जो दुनिया में बड़े महान कहलाते हैं, लेकिन महान होने पर भी उनको भी आपकी चरण की सेवा उपलब्ध नहीं है, और मुझे पता है आपकी जो धर्म पत्नी पार्वती है ना, वो भी कभी कभी साड़ी की कामना हो तो आपकी चरण की सेवा करती है, हंस लिया ना तुमने, कम से कम इतना तो हंसे हो ना, शायद हंसने का मौका और जगह ना मिलता है, इतने तो हंसती हो ना तुम लोग, कभी कोई एक ज्वेलरी की आवश्यकता हो तो शिव की सेवा करने के लिए शायद नजदीक जाए। चिरम 2400 घंटा तो शायद पार्वती भी शिव सेवा नहीं करेगी, करेंगे है? नहीं करेंगे मुझे लगता है। और हरि ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, मैं पार्वती को हरि ब्रह्माओं को भी इन लोगों के लिए अति दुर्लभ आपके चरण की सेवा मैं करना चाहता हूं, आपके चरण में बैठकर चरण की सेवा करना चाहता हूं, वो भी कोई एक बार या दो बार की बात नहीं, चिरम याते। चिरम याते का याचे का अर्थ क्या होता है? जब तक मेरी जीव भाव बनी रहेगी जब तक, तब तक मैं आपकी चरण की सेवा करता रहूं, और जिस दिन जीव भाव मेरी छूट जाएगी उस समय मुझे किसी की सेवा करनी नहीं पड़ेगी, न करानी पड़ेगी, न करनी पड़ेगी न करानी पड़ेगी। अच्छा भाई, शिव जी को अपनी चरण की सेवा करानी पड़ती है कि नहीं है? कभी कभी उनके टांग दुखते हैं कि नहीं? आप लोगों का दुखता है कि नहीं? जब टांग दुखता है तो आपके मन में इच्छा होती है कि नहीं कोई आके टांग दबा दे है? होती है ना, जब दुखता है तो कोई काम ज्यादा करना पड़े, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़े है? तब मन में तो होता है, भले ही वो साधन उपलब्ध न हो, आपकी बहु आज्ञाकारी होगी तो ये बेटी जरा ये टांग दुख रहे हैं थोड़ा दबा देना तेल लगा के कहोगी, या कोई आज्ञाकारी सेवक होगा, नौकर होगा, कर्मचारी होंगे, बाई होगी, उसको कहेंगे आज तो बहुत दर्द हो रहा है जरा दबा दे हैं? लेकिन भगवान शिव के मन में कभी इच्छा होती होगी कि नहीं? अरे भगवान शिव के मन में कोई मेरी सेवा करे ये इच्छा नहीं होती है। फिर शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं कि मुझे आपकी निरंतर चरण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, मैं यही चाहता हूं। इसका मतलब है कि भक्त भगवान की सेवा करे ये भगवान नहीं चाहता, लेकिन भक्त चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, क्योंकि सेवा से, भक्त की सेवा से भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। समझ गए कि नहीं? भक्तों की सेवा से भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, और भगवान यानी परमात्मा भक्तों से यह अपेक्षा रखता ही नहीं है कि भक्त मेरी सेवा करे, नहीं रखता है। फिर क्यों करते हैं सारे भक्त भगवान की सेवा है? क्योंकि ये कहा गया है भक्तों का ही हित होगा, भगवान की सेवा करके भक्तों का ही हित होने के कारण भगवान भी यह चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरी सेवा करे, क्योंकि मेरी सेवा करेगा तो उसी का हित होगा, मेरा तो कोई प्रयोजन सिद्ध होना नहीं है। आप तो काम से कहा स्प्रिया, उपनिषद ने कहा जो आप तो काम है उसकी क्या स्प्रिया होगी, परमात्मा तो पूर्ण काम है, आप तो काम है, वो भक्तों की सेवा की अपेक्षा क्यों रखेगा? फिर क्यों बार बार कह रहे हैं परमात्मा कर्म करो और मुझे दो, कर्म करो और मुझे अर्पण करो, कर्म करो और मुझे अर्पण करो, बार बार क्यों कहते हैं? परमात्मा को हमारे कर्मों की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? परमात्मा खुद निकम्मा है क्या? कमा के खा नहीं सकता है क्या है? कमा के नहीं खा सकता है क्या? परमात्मा को क्यों ये कहना पड़ा कि खाने से पहले तो दी वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयत ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम, ये करके खाओ, ये क्यों करना पड़ रहा है उसको? इसीलिए कि उस अन्न में शुद्धि हो, उस अन्न से भगवान की तृप्ति नहीं होगी। तुम जो कटोरी में थोड़ा सा, छोटे से कटोरी में थोड़ा सा दूध और मिश्री डालकर भोग लगाओगे तुलसी का पत्ता रख के, क्या वो पेट भर जाएगा उसका? कभी सोचा है? है? तुम्हें दूध पीना हो को शाम को तो पूरा गिलास चाहिए, फुल फुल भर के गिलास चाहिए, और जब रस खानी होगी तो तुम्हें पूरा कटोरी भर के चाहिए। और तुम ईमानदारी से बोलो, भगवान को थाली धराने का कटोरी कितना बड़ा रखा है? ईमानदारी से बोलो मुझे, जितने बड़े कटोरी में तुम रस खाते हो, क्या उतना ही बड़ा कटोरी है भगवान को थाली धराने के लिए? तो इतनी से कटोरी में एक चम्मच रस डालकर, एक तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाते हो, प्राणाय स्वा पानाय स्वा। जमवा आओ सुनती रबर श्यामला। वाह, क्या मस्ती से गा देते हो तुम, थाल धराते हो। हा, गुजराती लोग करते हैं? नहीं नहीं, हा? क्या प्रार्थना करते हैं? क्या उससे उनका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। लेकिन तुम लोग कम होशियार नहीं हो। महाराज, भगवान तो एक है कि अनेक है? बोलो, भगवान तो एक है? सारी दुनिया का भगवान तो एक ही है ना? अब विचार करो, बंबई में कितने करोड़ की आबादी है? हैं? 100 करोड़ मान लो। 100 करोड़ तो इंडिया की है, 1.25 करोड़ बंबई की आबादी है। मान लो 1.25 करोड़ में से भी आधे भगवान को भोग लगाने वाले होंगे ना? होंगे कि नहीं? हैं? नहीं होंगे, आधे भी नहीं होंगे, थाली धराने वाले हैं। चलो 1/3 तो होगा ना? हैं? क्या 25 भी नहीं होगा? 25 करोड़ भी नहीं होंगे भगवान को थाली धराने वाले? नहीं होंगे। चलो 1 करोड़ तो होंगे ना? हैं? जरूर 1 करोड़ तो होंगे बंबई में। ओ, होंगे। मराठी भी भोग चारा धराते हैं भगवान के सामने, गुजराती मारवाड़ी सभी धराते हैं भाई। मान लो एक एक चम्मच 1.25 करोड़, क्या होगा? बड़ा भारी बाल्टी भर जाएगा। एक बाल्टी क्या, कितना भर जाएगा? कितना खाएगा वो एक भगवान? सभी लोग थोड़ा 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 देंगे, हैं? हजारों फूल में से मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा अपने चोंच में से लाती है, तो एक छत्ते में रखते रखते कितना होता है? 2-4 किलो हो जाता है, हैं? तुम कह सकते हो। इसलिए भगवान को तो सभी लोग खिलाते हैं, इसलिए उनका पेट भर जाएगा। ऐसी बात नहीं। तब क्यों अर्पण करना पड़ता है? तो भागवत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, नैवात्मना प्रभुरयम निजलाभपूर्ण। परमात्मा तो निजलाभपूर्ण, अपने स्वरूप आनंद से आनंदित है। वह भक्तों के द्वारा अर्पित क्षुद्र और भौतिक पदार्थ की अपेक्षा वो नहीं रखेगा, फिर क्यों अर्पण करते हो? तो बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, ये प्रहलाद की स्तुति का श्लोक है ये। वह क्योंकि, इसीलिए हम परमात्मा को अर्पण करते हैं। नियम क्या है? बिंब को अर्पण किया हुआ प्रतिबिंब को स्वतः मिलता है। बिंब को अर्पण किया हुआ चीज बिंब को तो मिले चाहे न मिले, प्रतिबिंब को तो जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? ये भागवत का श्लोक है। क्योंकि परमात्मा बिंब है और जीवात्मा उसके प्रतिबिंब है। चिदाभास, परमात्मा चित स्वरूप है तो जीवात्मा चिदाभास स्वरूप है। इसलिए परमात्मा का प्रतिबिंब जीवात्मा है। और यदि कोई जीवात्मा बिंब को अर्पण करता है, प्रतिबिंब को स्वतः मिल जाता है। आप लोगों ने देखा हो, आप यदि किसी आईने के सामने, दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर की ललाट में तिलक नहीं होता, तिलक नहीं है मान लो। और आप यदि चाहो कि इतनी सुंदर है, एक तिलक ललाट में नहीं है, है? यदि उसमें एक तिलक लगा दूं तो कितना सुंदर होगा। या इसने साड़ी तो खूब मैचिंग किया, लेकिन कान में झुमके इसने नहीं लगाया, इसके कान में दो झुमके भी बढ़िया लगा दूं, तो क्या प्रतिबिंब के कान में झुमका लगा पाओगे? है? या प्रतिबिंब के ललाट में तिलक लगा पाओगे? प्रतिबिंब को श्रृंगार करना होगा तो किसका श्रृंगार करोगे? प्रतिबिंब का। और यदि तुमने बिंब का श्रृंगार कर दी, प्रतिबिंब सुंदर स्वतः सुंदर होगा कि नहीं? है? बिंब का श्रृंगार कर लिया तो प्रतिबिंब स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा को अर्पण करने का मतलब यह है कि परमात्मा को अर्पण करने के बाद परमात्मा को जो प्राप्त होगा, परमात्मा की को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वह स्वतः ही जीवात्मा को अपने आप प्राप्त होगा, तभी तुम परमात्मा को अर्पण करते हो। यह भागवत का सिद्धांत है, तुम्हें करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि तुम्हें उसका फल प्राप्त होना है। देखो, हमारे श्रद्धेय गुरु महाराज थे, तो प्रश्न हुआ, महाराज जी का शरीर 85 में, इतनी 85 वर्ष की उम्र में शरीर, पंचभूतक शरीर नष्ट हुआ, और वो निमित्त बन गया जबड़े का कैंसर। निमित्त बन गया वो, कोई भी निमित्त बन सकता है शरीर जाने के लिए, बहाना खोजता है वो शरीर। हाँ, जब जाना होगा इसको तो ये हजार बहाना खोजेगा, उसके एक बहाने को बंद करो दूसरा बहाना खोजेगा, दूसरा बंद करो तीसरा बहाना खोजेगा, और उसी को निमित्त बनाकर जाएगा वो, तो बना के जाए। तो महाराज जी का अंतम स्थिति थी शरीर का, फिर भी सुबह 9 बजे महाराज जी ने प्रवचन किया और 10:30 बजे शरीर खत्म हो गए। बिस्तर में लेटे लेटे भक्त लोग गए दर्शन करने, प्रश्न किया, महाराज जी के परम शिष्य थे, माता जी थी, उनने प्रश्न किया, महाराज आप जैसे इतने महान संतों को इस तरह का कष्ट क्यों होता है? इससे अच्छा तो महाराज ये आजकल की जो बीमारी है वो सबसे अच्छी है। कौन सी बीमारी? तुम लोग समझते तो बहुत हो, वो सबसे अच्छी है। अटैक आया फट गया, किसी कई बिस्तर में नहीं पड़ना, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं, तुरंत एक झटका लगा गया, बस आ किया हा हो गया, वो सबसे अच्छी है। लंबे बीमार होकर पड़े रहे, सभी लोग हैरान हों परेशान हों, तो महाराज जी ने संक्षिप्त जवाब दिया है, तुम गलत कह रही हो। लंबे बीमार यदि होते हैं कोई, उसका फल उनकी सेवा करने वालों को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। क्या होता है बोलो? ये दृष्टि आज के युवाओं को समझना जरूरी है। उनकी कहां दृष्टि है? वो माता पिताओं के प्रति ये दृष्टि होना बहुत जरूरी है। ये भाव है नहीं आज के जनरेशन में। महाराज जी ने जवाब दिया, मान लो कि कोई मां कोई बाप लंबे बीमारी पड़ा हुआ बीमार, और उसका बेटा या बहू उसकी सेवा कर रही है, कर रहे हैं, उनको सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, बाप के मरने के बाद, मां के मरने के बाद उसके नाम के धन और संपत्ति जो है वो तो प्राप्त होगा ही होगा। किसको? सेवा करने वाले को। साथ में लंबे समय तक सेवा करने का पुण्य भी प्राप्त होगा। लेकिन जो ऑन द स्पॉट जो हार्ट अटैक से मर गए, वो बड़े अन्याय कर रहे हैं। किसके प्रति? किसके प्रति? अपने बहू बेटों के प्रति। भौतिक संपत्ति तो वो छोड़कर जा रहे हैं, दे के जा रहे हैं, लेकिन उनको पुण्य का अवसर नहीं दिया उन्होंने। ये बड़ा अन्याय है। ये दृष्टि रखनी चाहिए वृद्धों की सेवा करते समय, माता पिता की सेवा करते समय, गुरु की सेवा करते समय। फायदा किसको है? मेरी मां तत्काल नहीं मरी, मुझे सेवा करना पड़ रहा है, उसका धन जो होगा वो तो मुझे मिलेगा, साथ मुझे जो पुण्य मिलेगा, धन ये लोक के लिए होगा, पुण्य परलोक के लिए हो जाएगा, बड़ी कृपा कर रही है। ये भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक सेवा में प्रवृत्ति रुचि नहीं बढ़ेगी। महाराज जी ने कहा वो अन्याय कर रहे हैं जो तुरंत मरते हैं। मैं समझ गया, आ गया कि नहीं आप लोगों को, अन्याय करते हैं। उन्होंने अपने बहु बेटों को, अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को सेवा करने का अवसर नहीं दिया, और सेवा करने का अवसर प्रदान न करना, बोलो अन्याय है कि नहीं? पुण्य से वंचित हो गए कि नहीं बोलो? है। अब माता पिता गुरु आदि जो बीमार हो रहे हैं उनको अपेक्षा है कि नहीं मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरी बहू मेरी सेवा करे, उनको जरूरत है कि नहीं, अपेक्षा है कि नहीं, इस पर मत जाओ। लेकिन बहु बेटों को यह अपेक्षा है कि नहीं कि मुझे पुण्य मिले, तो सेवा करनी चाहिए। किसकी? अपने आप पुण्य के अवसर प्राप्त हो रहा है, यह तो गौरव की बात है भाई। धन तो मिल रहा है, मिल रहा है, पुण्य भी मिल रहा है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज क्षुद्र फल देने वाले तो बहुत हैं संसार में, हाँ, लेकिन उन क्षुद्र फल देने वालों की मैं न सेवा करूंगा, न उनकी स्तुति करूंगा, न भजन करूंगा, न गुणगान करूंगा, न उनके आश्रय में मैं जाऊंगा। मैं तो आपके ही सेवा की अपेक्षा रखता हूं। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा, न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम्। हाँ, श्री सूक्त का पाठ करो तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी, तो तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। होगी कि नहीं? लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी देगी वो, है? कुबेर की स्तुति करो, इंद्र के लिए यज्ञ करो, इंद्र प्रसन्न होगा तो सब कुछ दे सकता है। लेकिन हे शिवा, हमको ये पता है आपके महिमा के सामने इंद्र तो क्षुद्र है, कुछ भी नहीं है इंद्र, हाँ, वो भी आपकी सेवा करता रहता, आपके सेवा के लिए वो भी तड़पता रहता है, उसके क्या महानता है भाई? सारी दुनिया के जो बड़े से बड़े हैं देवता, विबुधा देवता, वे सब बहुत हैं, जरा सा प्रशंसा कर दो, उनकी स्तुति गान कर दो, प्रसन्न होकर बहुत देने वाले हैं वो। अरे भूत प्रेत भी देते हैं वो, हाँ, यूं तो खाली देवता नहीं, भूत प्रेत भी देते हैं, वो खुश हो जाए तो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ क्या होगा? क्षुद्र ही तो होंगे वो, क्षुद्र फलदा। आप लोगों ने शिव पुराण सुनी होगी। शिव पुराण में भगवान शिव का एक परम भक्त का नाम आता है, उपमन्यु। शिव पुराण में उपमन्यु की शिव भक्ति का इतना सुंदर वर्णन है। उपमन्यु बालक है। अब आप लोग अन्यथा नहीं लेना, कोई वैष्णव हो तो नाराज हो जाओगे, नाराज नहीं होना। उस शिव पुराण को प्रमाण नहीं मानते, भागवत को प्रमाण मानते हैं, समझे कि नहीं? जबकि शिव पुराण वेदव्यास जी की, भागवत भी वेदव्यास जी की, कहते तो है ना, लेकिन श्रीमद् भागवत ने जो कहा उसको तो प्रमाण मानेंगे, अन्य पुराणों ने जो कहा उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है भगवान कृष्ण के शिव मंत्र के दीक्षा गुरु उपमन्यु है। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से शिव मंत्र पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है, सीधा शिव पुराण में लिखा है, पढ़ लो। उपमन्यु इतने महान शिव भक्त थे, लेकिन जब हम ये कहते हैं तो वो लोग नहीं मानते। भागवत में लिखा हो तो बोलो, शिव पुराण की बात हम नहीं मानेंगे। भगवान कहीं उपमन्यु से दीक्षा लेगा? अरे भाई ये तो ईश्वर की लीला है, वो क्या क्या नहीं लेगा। गोपिनियों से जब मक्खन लेता है तो उपमन्यु से दीक्षा लेने में क्या अर्जा है बोलो। गोपिनियों से छाछ लेता है, गोपियों से छाछ लिया कि नहीं, वो भी नाच नाच कर लिया है, खूब नाच दिखाया, तब एक गिलास छाछ दी चले गए, आहा क्या आनंद आ गया है। लियो जी, साहित्यकारों ने यह चर्चा किया है कि नहीं बोलो, भगवान श्री कृष्ण की लीला में चोरी चोरी करके खाना पड़ रहा है, चोरी कर करके खाना पड़ रहा है कि नहीं मक्खन। तुम लोग जो भोग लगाते इतना देते उससे पेट भरता नहीं है, तो फिर चोरी करके खाते हैं। भोग लगाते समय इतना थाल भर भर के लगा देते तो उनको चोरी करना ना पड़ता, और तुम थोड़ा थोड़ा लगा देते पेट भरता नहीं तो फिर चोरी करते हो, और क्या करेंगे। उपमन्यु की कथा आती है शिव पुराण। भगवान शिव के परम भक्त थे, तपस्या, शिव जी के साक्षात्कार के लिए उन्होंने बड़ा भारी तपस्या की। बालक थे 5 साल के, उपमन्यु का उम्र 5 वर्ष का था, जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव और जैसे उपमन्यु, जैसे नचिकेता। हा देखो, बूढ़े होने पर बिगड़ जाते हो। हाँ, हमारे हिंदी भाषा में तो ये कहते हैं कि साठी हुआ कि सठी आ गया, बूढ़े होने पर और बिगड़ जाते हैं। बेचारे बालक को जो भक्ति लग जाएगी, बूढ़ों को इतनी जल्दी भक्ति नहीं लगती है। सारे प्रमाण तो यही है ना, शास्त्र में भरे पड़े हैं। बच्चों के भगवत भक्ति का उदाहरण तो कई है पुराणों में। हाँ, भगवान शिव की अनन्य भक्ति करते थे उपमन्यु, तो उनके खाना पीना सब छोड़ दिया, तो उनके तपस्या के चलते पृथ्वी में डगमगाने लग गया। कैलाश में बैठे थे भगवान शिव, तो वो ऐसा लगा कि भूचाल आ रहा है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, तो उपमन्यु तपस्या कर रहा, खाना पीना छोड़ दिया, प्राण को रोध कर दिया, निरोध कर दिया, वृष्टि वायु समष्टि में जाकर धारणा कर दी, और धारणा समष्टि वायु को ही उन्होंने रुद्ध कर दिया, तो बस हाहाकार। किस लिए, बोले आपके दर्शन की अभिलाषा से उपमन्यु तपस्या कर रहा है। बोले वो मेरी अभिलाषा रखता है कि कोई और वस्तु रचाता है, जाके परीक्षा करते हैं। पुराण में उल्लेख आया है कि भगवान शिव इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ के जहां उपमन्यु तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच गए, और उसको संबोधन किया, ए बेटा तुम इतना कठोर तपस्या कर रहे हो किस लिए। उपमन्यु ने कहा मैं शिव के साक्षात दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। तो इंद्र ने कहा, यानी शिव ने कहा, इंद्र का रूप धारण करके आया था, उन्होंने कहा बेटा इंद्र की तपस्या क्यों, माने शिव की तपस्या क्यों करते हो, क्या है उसके पास, कुछ भी नहीं है। अमंगल्यम शीलम, मैमनि स्तोत्र में आया ना, श्मशाने स्वाक् क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सचरा चिता भस्मा लेपो सर्गभ निर्कोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। मैं स्वर्ग का साक्षात राजा हूं, इंद्र देख ले ऐरावत हाथी, देख ले भाई जयंती माला, ये देख मैं स्वर्ग का राजा, तुझे जो चाहिए मैं तुमको दे दूंगा, तेरे सारे मनोरथ पूरा कर सकता हूं मैं। उस फक्कड़ जोगी की क्या तू भक्ति करता है, छोड़ दे उसकी भक्ति, कुछ भी नहीं है उसके पास, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कुल, न गोत्र, तू तो ब्राह्मण है ना बेटा। बोले हां मैं तो ब्राह्मण हूं, और शिव तो कुल गोत्र का मालूम ही नहीं है, खानदान क्या है, किस गोत्र के हैं शिव जी, किस कुल के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो, और लगता है उनके आचरणों से तो वो तो परम शूद्र हैं। लेकिन पुष्पदंताचार्य जी ने एक बात कह दी है, कोई भक्त भगवान का आचरण अमंगलमय है इतने रूप में स्मरण करता है तो भी उसका मंगल हो जाता है। देख लो, भगवान शिव का आचरण शूद्र जैसा है, इतने यदि आचरण स्मरण करता है तो भी उसका परम मंगल हो जाता है। स्मर्त्री नाम परम मंगलमसी। हाँ, तो बड़ी निंदा कर दी भगवान शिव की। उपमन्यु ने कहा कि देख इंद्र, तू यहां से चले जा, तो मेरे आराध्य देव की तू निंदा नहीं करना, और ज्यादा निंदा करता है तो मैं तुझे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो छोटा बालक हूं, तो शक्तिशाली है, समर्थ है, तुझे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शिव की तू यदि निंदा करता है, योग अग्नि से मैं अपने शरीर को ही जला के खत्म कर दूंगा। हाँ, बोल तो क्या चाहता है तेरे सामने, मैं अपने शरीर को योग अग्नि से जलाकर खत्म कर दूं, और या तेरी शिव निंदा को चुपचाप सुनता रहूं? वो हमसे नहीं होने वाला है। तो जाता है कि मैं शरीर को नष्ट कर दूं? बोल, मुझे शिव के अलावा और किसी से कुछ लेना नहीं है। तू क्या देगा? बोल, तेरे पास क्या है? तेरे पास जो है वो शिव भक्ति और भगवान शिव के अनन्य भक्ति के सामने क्षुद्र है। बस क्षुद्र फलदा सहस्रम वर्तन्ते विबुधा जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ने स्वप्ने वा। तो जब उसने उपमन्यु ने इंद्र के सामने इस प्रकार की बात कही तो भगवान शिव को लगा कि यह तो अनन्य है, मेरे अलावा दूसरे के किसी की कामना नहीं। अनन्य शब्द का अर्थ वैष्णव लोग दूसरी बात करते हैं, अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, लेकिन अनन्य शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने दूसरे ढंग से किए। हां, अनन्य माने अद्वैत। वैष्णव लोग अद्वैत नहीं करते, अपने से भिन्न का अस्तित्व न होना वही अनन्य है। वैष्णव कहते हैं विष्णु के अलावा और किसी का भजन न करना वो अनन्य है। और हम वेदांती आदिगुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? न अन्य, अपने अलावा दूसरे का अस्तित्व ही नहीं, यानी ब्रह्म के अलावा परमात्मा के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं। जीव भी केवल प्रातिभाषिक मात्र है, पारमार्थिक तो ब्रह्म ही है। पारमार्थिक में ब्रह्म के अलावा और किसी की सत्ता न होना, इसको क्या कहते हैं? अनन्य, न अन्य, ये अनन्य। दूसरा तो है ही नहीं, तो द्वैत कहां से आएगा भाई? अनन्य का अर्थ तो द्वैत का अभाव। ये एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ये देख लो मुंडक उपनिषद, मांडू के उपनिषद में एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। वहां दूसरा कहां से आएगा और अन्य होगा? अन्य भक्ति कहां से होगी? अनन्य, ऐसा अर्थ किया है वो शंकराचार्य जी ने। तो उपमन्यु ने देखा कि ये मेरे अलावा और किसी को भजता नहीं है, नहीं तो जीवन ही खत्म करने को तैयार हो गया। देख लो, तो तुरंत भगवान शिव ने उनका जो ऐरावत हाथी था इंद्र का, वो तो उपमन्यु के देखते देखते वृषभ हो गया। क्या हो गया? वृषभ का रूप धारण कर लिया। और जो इंद्र का रूप सामने खड़ा था, देखते देखते साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। बेटा हम तुमसे प्रसन्न है, तुमको क्या चाहिए बोलो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तो उपमन्यु ने कहा कि मेरे और कोई अभिलाषा नहीं, आपके चरण की सेवा बायक और मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। क्योंकि एक नीति है, नीतिकारों ने कहा सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्न, हाथी का पांव जहां पड़ा हुआ हो उसके अंदर सभी जीव जंतुओं का पांव आ जाएगा। आएगा कि नहीं? भगवान के चरण के अंदर तो सब कुछ आ गया, चरण पकड़ लिया तो सब हो गया। देखो पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम विदिवि, सारा तीनों लोग चतुर्भुवन का सब कुछ भगवान शिव के एक चरण में है और हमको तो दो चरणों की सेवा करने को मिल रहा है, अब क्या चाहिए बोलो है? कामधेनु गाय यदि जिसके घर में बंधी हो उसको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं बोलो है? कामधेनु गाय जिसके घर में बंधी हो, आपने सुना है कि नहीं? वशिष्ठ के आश्रम में क्या था? कामधेनु गाय नंदी थी, नंदिनी, नंदी, नंदिनी, क्या एक ही चीज है, नंदिनी थी। तुम लोग जो है नंदी शब्द का अर्थ सांड समझ रहे होंगे, इसलिए मेल फीमेल कहो ना, और क्या, नंदिनी थी। चलो कामधेनु गाय हमने कहा था, कामधेनु गाय थी और उसी से वशिष्ठ जी सब कुछ योगक्षेम किया करते थे। इतना बड़ा गुरुकुल था, उनको प्रेमपुरी आश्रम में आकर डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं थी। थी बोलो सिमन भाई, वशिष्ठ जी आए प्रेमपुरी आश्रम डोनेशन मांगने? आत्मानंद तो आया होगा, आश्रम चलाना है ना आत्मानंद को, है आत्मानंद को आश्रम चलाना है, गुरुकुल चलाना है, वृद्धाश्रम चलाना है, वो तो डोनेशन मांगने आया होगा। लेकिन वशिष्ठ जी आए, क्यों आएंगे भाई? कामधेनु गाय है, वो तो क्या उनको जो संकल्प करो वो पूरा हो जाए। अब कामधेनु गाय में वो शक्ति कहां से आ गई? क्योंकि उसके बछड़े ने शिव की सेवा की, तो वो शिव भक्ति का, शिव जी की सेवा करने का फल मां को भी प्राप्त हो गया और वो शक्ति उसको आ गया कि उसके सामने बैठकर जो कल्पना करे वो वस्तु उपलब्ध हो। तो वो भगवान शिव के चरण में, क्या वो कामधेनु गाय की शक्ति नहीं है क्या? अब वो चरण की सेवा जिसको प्राप्त हो, सान्निध्य जिसको प्राप्त हो, उसको फिर क्या अन्य फलों के लिए अन्य देवताओं की उपासना करने की जरूरत पड़ेगी? ये देख लो गीता में कहा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वद तद्वद कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। हाँ, मुमुक्षुओं की सारी कामना तो परमात्मा में पहुंचने के बाद सब कामना शांति को प्राप्त हो गई, अब कामना कोई रहा ही नहीं। जैसे सारे नदी दौड़ दौड़ कर समुद्र में पहुंचते हैं और समुद्र में पहुंचने के बाद नदियों की गति रुक जाती है, इसी तरह जीवात्माओं की मन की वृत्ति जो काम्य पदार्थों के प्रति की कामना वृत्ति है, वो परमात्मा को प्राप्त होने के बाद वो काम्य वृत्ति खत्म हो जाती है, कुंठित हो जाती है। अब वो भाव उपमन्यु को प्राप्त हुआ। पार्वती के बारे में भी यही है, आए कथा है पुराण में, भगवती पार्वती पहले जन्म की सती और दूसरे जन्म में पार्वती, उन्होंने निश्चय कर लिया कि शिव के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी और उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या किया। तो एक बार भगवान शिव खुद गए कि क्या ये मेरे अलावा और किसी को नहीं चाहती है, मुझे ही चाहती है, देखे तो सही। रूप बदलकर पहुंच गए और पार्वती के सामने शिव की बड़े भारी निंदा की। हाँ, बड़े भारी निंदा की शिव जी की उन्होंने, अरे वो भूत प्रेतों के साथ रहता है, उनके साथ तो कैसे रहेगी है, उसको छोड़ दे, उसका भजन करना छोड़ दे, शादी करनी हो तो मेरे से कर। हाँ, उस भूत प्रेत लेकर चलता है, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, बड़ी निंदा कर दी। तो सती ने भी यही कहा है जो उपमन्यु ने जवाब दिया है, मेरे सामने ऐसी बात मत करो, तुम यहां से चले जाओ, शिव को छोड़कर मैं किसी अन्य को स्मरण कर ही नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती हूं, और तुम ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें तो मैं मार नहीं सकूंगी, मैं अपने शरीर को, क्योंकि मैंने शरीर को परित्याग करने का प्रैक्टिस किया है। किसने? तुम लोगों ने नहीं, पार्वती ने। उन्होंने ये ट्रेनिंग कहां लिया था बोलो? जब सती थी तब लिया था कि नहीं? दक्ष के सामने, दक्ष के यज्ञ में स्वयं अपने योगाग्नि से प्राणायाम करके अपने चित्तवृत्ति को अग्नि में धारणा की और अग्नि अमूर्त अग्नि वहीं मूर्त हो गया और शरीर प्रदग्ध हो गया। वो ट्रेनिंग तो वो अभ्यास तो पार्वती को है ना, का ज्यादा बकबस करेगा तो मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, जा भाग जा यहां से। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी निष्ठा ठीक है, तुमको शिव जी की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पार्वती ने कहा कि कब, बोले अभी ले जी। कैसे, बोले ऐसे ये अपना रूप दिखा दिया वहां, चले अब तुझे यही चाहिए था ना, बोले हां धन्य हो मुझे यही चाहिए बस। साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। ये सारी भाव इस श्लोक में है, हो भक्त का यही भाव है। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदः न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणम तत्कृत फलम हरि ब्रह्मादीना अपि निकट भाजाम असुलभम चिरं याते शंभो शिवतव पदाम्बोज भजनम। ब्रह्मा जी आपके नजदीक तो रहते हैं लेकिन आपकी चरण की सेवा करने का उनको फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रह्मा ये न कुलाल वन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे। अरे ब्रह्मा जी के पास इतने जीवात्मा लाइन लगाकर खड़े पहुंच जाते हैं। एक जीवात्मा पहुंचता है, हे परमात्मा मुझे शरीर दो, मुझे अब शरीर दो, जो शरीर आपने दिया था जिस कर्मफल को भोगने के लिए वो कर्मफल भोग चुका हूं, अब दूसरे कर्मफल भोगने के लिए मुझे दूसरा शरीर दो। और ब्रह्मा जी को तुरंत उसको शरीर बनाकर देना पड़ता है, समझे कि नहीं? तुरंत है। जब बरसात का सीजन शुरू होता है छाता बेचने वालों को फुर्सत होगा है? छतरी बेचने वालों को फुर्सत मिलेगा? रात दिन छतरी बेचने लग जाए। जब स्कूल आरंभ होता है तब स्टेशनरी बेचने वालों को फुर्सत होगा है? क्या कहते हैं स्टेशनरी बेचने वाले दुकानदार, क्या कहते हैं है? महाराज अभी फुर्सत नहीं है क्योंकि सब कॉलेज खुल चुके, एडमिशन का समय हुआ, स्कूल चालू हो गया है, ये बेचना है हमको, सप्लाई करना है, उसको देना है, उसको देना है, डिमांड का डिमांड। बेचारे उनको सप्लाई करते ही फुर्सत नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा जी को फुर्सत नहीं हो है? एक के बाद दूसरा जीव, उसको उसका प्रारब्ध देखा, इसको कौन सा शरीर चाहिए है? मनुष्य का चाहिए तो मनुष्य का साचे में वो मिट्टी रॉ मेटेरियल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बना, इसको पांचों भूतों को मिलाकर एक जगह रखा है उन्होंने, फट से उसमें से निकाला, साचे में डाला, खड़ा कर दिया, ले घुस जा। वो जीव घुस गया। दूसरा कहता है महाराज उसको तो मिल गया शरीर, मुझे भी दे दो। अब उन्होंने फिर मसाला देखा, अब देखा अब उसको, महाराज उसको जो शरीर दिया वो मुझे दो। बोले खबरदार है, क्यों उसको दिया हमको क्यों नहीं दिया? तेरा प्रारब्ध में वो शरीर नहीं है, तुझे दूसरा शरीर मिलेगा, कौन सा मिलेगा बोलो? कुत्ते का मिलेगा। फिर दूसरा सांचा लिया, कुत्ते का डाई, कुत्ते के साथ आकार का वो सांचा लिया, मेटेरियल वही है, मसाला वही है, खाली आकार का फर्क है, मसाला एक ही है भाई। मसाला वही, मसाला में कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखो कड़ी में डालो तो वही नमक है, दाल में डालो तो वही नमक मिर्ची धनिया है, सब्जी में डालो तो वही नमक मिर्ची धनिया, कड़ी में डालो वही नमक मिर्ची धनिया, अचार में डालो वही नमक मिर्ची धनिया। बोलो मसाला कोई दूसरा लाते हो क्या? नाम बदल जाता है। इसी तरह ब्रह्मा जी उसको फिर कुत्ते के वो आकार का सांचा ले आया, मसाला वही था, डाल दिया, फट खड़ा कर दिया, घुस जा इसमें जा। वो बेचारा घुस गया, मुझे वो शरीर दो। फिर तीसरा आ गया, मुझे शरीर दो। जैसे देखा इसका कौन प्रारब्ध, कौन सा शरीर के लिए अभी प्रारब्ध तैयार है, देखा गड़बड़ करना नहीं है। फिर देखो कितनी सावधानी, उसको ब्रह्मा को शिवजी के चरण दबाने का फुर्सत कहां, बोलो। यदि एक घंटा भी शिवजी के चरण तेल लगाना और मासिल करना यदि चले गए ब्रह्मा जी, तो वहां तक कितने क्यों खड़े हो जाएंगे जीवात्मा हो गए, फिर तो हल्ला करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क जाम हो जाएगी। तो वो न हो इसके लिए। अब दूसरी बात, विष्णु को कहां फुर्सत है। ब्रह्मा ने जैसा भी शरीर बनाकर बाहर फेंक दिया स्टेचू, जीवात्मा को उसमें घुसना पड़ा। घुसने के बाद फिर बाकी काम फिर विष्णु को संभालना है कि नहीं, बोलो। अब विष्णु को बड़ी मुश्किल है, वो शरीर को लेकर वो खड़ा हो गया, करने लगा, फिर दूध तैयार करो बेचारा। वो दूध बनाने वाला कौन, ब्रह्मा तो बनाएगा नहीं दूध, विष्णु बनाएगा, उसको फुर्सत कहां। क्या मजा आ रहा है ना, पैसा वसूल, हमने उस दिन कहा था ना, देखो ये लीला है ईश्वर की, इसी तरह इनका चलता है। इसीलिए विष्णु को भी फुर्सत नहीं, ब्रह्मा को भी फुर्सत नहीं, पार्वती को भी फुर्सत नहीं। दो दो बच्चों का संभालना है, कम खेल नहीं है वो, कार्तिक और गणेश। उसके तो कार्तिक के तो 6 मुख हैं, ड्रेस सिलाना होगा तो भी बड़ा मुश्किल से, 6 मुख सड़ानन, और खाएगा भी 6 मुख से, 1 मुख से जितना खाएगा गणेश उसका 6 गुना वो खाएगा। रसोई बनाते बनाते हैरान, पार्वती को कहां फुर्सत है शिव की सेवा करने के। तो भक्तों ने कहा महाराज, शंकराचार्य जी कहते महाराज हमको फुर्सत है, हम तो सन्यासी हैं, हम सन्यासी हैं, ना पत्नी है, ना कोई है, ना बच्चे है, ना बच्चे है, ना बूढ़ी मां है, ना बूढ़ा बाप है, ना कोई है, कुछ नहीं, हम फुर्सत में हैं, इसलिए हमको अपने चरण की सेवा करने के लिए हमको नियुक्त तो करो, हम इसी में खुश रहेंगे महाराज। हरि ब्रह्मादीनाम निकट भाजाम असुलभम ये चिरम याचे शंभो शिव तव पदम भोज भजनम। अम्भ माने जल, अम्भोज माने जल से जो उत्पन्न हुआ, अम्भोज कमल, पद कमल, पद सरोज चरण कमल की सेवा करने, भजन माने भज सेवायाम, सेवा करने का अवसर हमको चाहिए। चिरम याते, ऐसा नहीं करना कि एक बार नियुक्ति कर दी फिर बाद में हटा दो। चिरम याते ये कंडीशन है, कब तक, बोले जब तक मैं जीव रहूंगा तब तक आपकी सेवा करूंगा, और आपकी कृपा होकर जीव भाव खत्म हो गया तो फिर मैं शिव स्वयं हो गया, तो फिर जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं, फिर तो सेवा कराने की करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सेवा कराने की जरूरत नहीं है, मुझे सेवा करने की जरूरत है। ये देख लो, आपको सेवा कराने की जरूरत नहीं है, मुझे सेवा करने की जरूरत है, इसलिए सेवा का अवसर मुझे दे दो। आगे कहते हैं स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये सकुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्री वा स्तुति नटन से स्वचतुर कथम राज्ञां प्रीतिर भवति मयि कोहं पशुपते पशु मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो। हे विभो, विभो माने व्यापक, विभु व्यापक, आप व्यापक हैं मैं व्याप्य हूं, आप बड़े हैं मैं छोटा हूं। महाकाश व्यापक है, घटाकाश व्याप्य है, इसलिए आप व्यापक हैं मैं व्याप्य हूं। हे विभो, मेरे में कोई कुशलता नहीं है, मैं एक संसारी को भी प्रसन्न नहीं कर सकता, एक क्षुद्र राजा को भी खुश करने की कला मुझ में है नहीं, तो संसार में मैं जीऊंगा कैसे? क्योंकि संसार का नियम है वो, स्मृतौ शास्त्रे वेद्ये। कुछ लोग स्मृति शास्त्र को पढ़ते हैं, बड़े स्मृति का ज्ञान रखते हैं, और उन शास्त्र स्मृति का, धर्म आदि का, मनुस्मृति, हाँ, नारद स्मृति, हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनका सब ज्ञान वाले हैं, वे लोग सबको स्मृति का व्याख्या करते हैं, सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके द्वारा उनका योगक्षेम चलता है। समझ गए ना? मैंने कोई स्मृति पढ़ी नहीं है, और जिसने स्मृति नहीं पढ़ी हो वो लोग तो फिर वेद आदि पढ़ा है, जो वेद को जानते हैं इसलिए वेद वेदांग को जानने वाले लोग वैदिक यज्ञ आदि कराते हैं, बड़े बड़े जजमानों के यहां जाकर और खूब दक्षिणा ले आते हैं, और उनके द्वारा दिए गए दक्षिणा से उनका अपना योगक्षेम चल जाता है। मैंने वेद भी नहीं पढ़ी है और यज्ञ में क्या कराऊं है? मैं किसी जजमान के यहां रुद्री कराने जाऊं तो वेद ही नहीं पढ़ा है तो मुझे रुद्री नहीं आती है, तो मैं कैसी जजमानी करूं और अपना योगक्षेम चलाऊं भाई? स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये। ठीक है, शास्त्र वेद आदि का पूरा नहीं जानते हो, लेकिन जड़ी बूटी रसायन को तो कुछ ज्ञान रखते हो ना, वैद्यकीय। तो कोई बीमार हो गया तो उस अनुभव का प्रयोग करके, कोई बीमार है उसका रोग दूर हो गया, निदान हो गया, तो उससे जो मिलेगा उससे योगक्षेम चला लेगा वो। मुझे वो वैद्यकीय शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति का भी कुछ ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे अपनी रोजी रोटी करूं, कैसे योगक्षेम करूं? शकुना, शकुन माने शुभ मुहूर्त जी, शकुन शास्त्र। लोग कहते हैं ना, आंगन के ड्योढ़ी में कोई काक क्या क्या करने लगा, लोग उसकी भाषा को, संकेत को समझते हैं। हाँ, ते आ ये काग इस तरफ बैठकर इतनी बार कहां कहां किया, तो इसका मतलब ये शुभ समाचार है, और काग इस तरफ बैठकर इतनी बार कहां कहां किया, इसका मतलब ये अशुभ समाचार है। इसको शकुनस बोलते हैं, शकुन ज्ञान। हाँ, क्या शुकन, हाँ उसी को संस्कृत में शकुन कहा, तो शकुन शुकन, वो भी मुझे ज्ञान नहीं है। हाँ? बिल्ली दाहिनी से निकली तो उसका क्या होगा, बाएं से निकली तो उसका क्या होगा, आगे से गई तो उसका क्या होगा, ये ज्ञान शुकन ज्ञान है। खाली घड़ा वाला सामने आ गया तो अशुभ हो गया, तुम लोग मानते हो कि नहीं? है, यात्रा में कोई खाली घड़ा लेकर खड़ा हो गया तो फिर वो अवशकुन हो गया, कोई भड़ा भरा हुआ घड़ा लेकर खड़ा हो गया तो शुभ शकुन हो गया, ये ज्ञान भी मुझे नहीं है। रात को ये स्वप्न देखा इसका फल ये होगा, हाँ इतनी बजे देखा था उसका ये फल होगा, प्रातः काल देखा था कि मध्य रात्रि में देखा था कि सोते ही देखा था कि उठने से पहले देखा था कि हैं, उसका क्या फल होगा? एक ही स्वप्न का एक ही फल नहीं होता है, किस समय देखा इस पर भी निर्भर करता है। हाँ, इस पर भी निर्भर करता है। यदि रात को स्वप्न तुमने देखा प्रातः काल, कोई सर्प आया और तुमको टोक लिया, काट लिया उस सर्प ने और खून निकल गया, तब माला माल, बस माला माल। एक सर्प को तुम पाल के रखना और कहना, हे सर्प ठीक सुबह के समय में तुम मेरे सामने आना और मुझे टोकना काटना, लेकिन स्वप्न में हो, क्योंकि महात्मा ने कहा है माला माल लेव जी, लेकिन तुम्हारे कहने से सर्प आएगा? वो अपनी मर्जी से आएगा है, देख लो ऐसा नहीं। यदि यात्रा में निकलो मरा हुआ शरीर के अर्थी जाते हुए देखा तो बहुत शुभ माना जाता है लेव जी, स्वप्न में। जागृत में भी अर्थी दिखाई पड़ी मृत्यु, शुभ माना जाता है। इसको कहते हैं सुकन शास्त्र। हाँ, उसका भी मुझे ज्ञान नहीं है तो मुझे कौन पालेगा। स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन कविता गान फणितौ। मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं कि किसी को प्रशंसा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बढ़िया बढ़िया कविता लिखूं और वो कविता सुनाऊं, उस सुनकर प्रसन्न होकर वह कुछ दे। राजा भोज के नव रत्न थे, है? राजा भोज के नवरत्न सुना है कि नहीं। राजा भोग बड़ा भारी विद्वान था लेकिन राजा था, और बड़े बड़े विद्वानों को, नव विद्वानों को उसने राजपुरोहित बनाकर रखा था, और सभी से एक ही काम था सभी का कि बढ़िया सा बढ़िया राजा की प्रशस्ति लिखो, कविता लिखो और राजा को सुनाओ। हाँ, काव्य सरिता है, काव्य गोष्ठी होती थी। कहते उन नवरत्नों में एक रत्न कालिदास, हाँ, दूसरा रत्न बाघ, बाघ भट्ट है, ये ऐसे ऐसे कई रत्न थे। तो कहते हैं उसका नियम था, जो कविता सुनाएगा, सबसे बढ़िया कविता सुनाएगा, उसको एक सुवर्ण असर भी देता था राजा भोज। तो हमेशा कालिदास तो था ही, वो ऐसी कविता रचना कर देता था कि और की कविता फेल। कालिदास को रोज एक सुवर्ण मुद्रा मिल जाए, सब लोगों को उसकी ईर्ष्या हो गई, ये कालिदास रोज इनाम ले जाता है, हमको कुछ नहीं मिलता। तो कालिदास जी इस बात को समझ गए कि मेरी इस सफलता को देखकर ये अन्य कवियों को ईर्ष्या हो गई है, ऐसा करता हूं एक हफ्ता मैं नहीं जाऊंगा, कल मैं नहीं जाऊंगा, सभा में जाऊंगा ही नहीं। हाँ, जाए वो लोग जाए तो बोले सब कवियों को, देखो भाई कल हम नहीं आएंगे, हमारा काम है घर में, मेरी पत्नी कह रही है एक महीने का राशन खत्म हो गया है। कालिदास के गुरु तो उसी की पत्नी है ना, तो गुरु की सेवा करनी है कि नहीं, एक महीने का राशन खत्म हो गया तो कल हमारे को राशन खरीदने का दिन है, हम तो राशन खरीदने, तुम लोग कविता बनाना ले जाना और राजा को सुनाना, पुरस्कार ले लेना तुम लोग, हाँ कविता ले लेना, कविता सुनाना, पैसा ले लेना। आप तो उन लोगों को मौका मिल गया कविता लिखना है, सब मिलकर कविता लिखने शुरू किया। किसी एक के दिमाग में स्फुरण ही नहीं होती है, कवि काव्य का विषय कविता का भाव ही स्फुरण नहीं हो रही है, क्या करे। तो अकेले अकेले तो कविता पूरा होना था नहीं, सब मिलकर एक कविता बनाओ और उसको सुनाए और उससे जो मिलेगा हम सब लोग बांट लेंगे, ले जी चलो वही सही। तो बोले ठीक है कविता लिखो, तू लिख शुरू तो कर। हाँ, तो एक ने कहा अरे राजा क्या जाएंगे, लेट होगा, भूख लगती है हमेशा, राजा से सबसे पहले तो भोजन की कामना करनी है भाई। भोजनम देहि राजेंद्र, आगे फिर दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, है? है? कुछ भी नहीं आ रहा है। दूसरे ने कहा कि अच्छा एक वाक्य तो तूने लिख दी, दूसरा वाक्य मैं लिखूं। बोले हाँ क्या लिखना है। साक सूप समन्वित, भोजन तो हो खाली भात नहीं, बढ़िया सब्जी भी हो, बढ़िया दाल भी हो, अचार और चटनी भी हो, सब्जी भी हो, सब हो। एक लाइन पूरी हो गई, दूसरी लाइन तो नहीं, दो लाइन पूरी हो गई। भोजनम देहि राजेंद्र, एक लाइन, दूसरी लाइन साक सूप समन्वित, हाँ दो लाइन पूरी होगी, चार लाइन की कविता है। अब दो लाइन कौन पूरा करेगा, उसको कहे तू पूरा कर, नहीं आ रहा है, उसको कहे तू पूरा कर। जाने दो, ये कविता लिखना भी एक झंझट का काम है। सब लोग छोड़ दिए, आधा कविता लिखी दो लाइन की छोड़ दिए। कालिदास को पता चला ये कविता लिख नहीं पा रहे बेचारे, जाके उन्होंने दूसरी दो लाइन उन्होंने अपने तरफ से लिख दिया। क्या लिखा पता है, माही संच शरत चंद्र चंद्रिका धवला ददी, ये वाक्य लिख दिया। अरे भाई भोजन हो, दाल और सब्जी हो, अचार चटनी हो, लेकिन दही न हो तो फिर क्या। दही की विशेषता देखो, विशेषण क्या है, कैसा दही, माही संच है, भैंस का दही, गाय का नहीं। दूध पीना हो तो गाय का और दही खाना हो तो भैंस का हो, है माही संच, कंडीशन रख दिया भैंस का दही कैसा, शरत चंद्र चंद्रिका धवला दधी, शरद ऋतु के जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा के जो पूर्ण चंद्रमा का जो स्वच्छ सफेद धवल है वैसा ही सफेद दही चाहिए, भैंस का दही भी जोड़ देना। अब शरद चंद्र चंद्रिका धवला दधी ये श्लेष, ये विशेषण तो कालिदास के बाद और कोई नहीं लिख सकता है। कालिदास जी ने कह दिया कि जाओ सुनाओ और जो पुरस्कार देगा वो तुम लोग बांट के ले लेना, हम कल नहीं जाएंगे। गए सभी पंडित लोग, बोले आज कालिदास नहीं आया, बोले आज उसकी पत्नी ने आटा दाल खरीदने का कह दिया है, वो नहीं आ रहा है। तो बोले आज हम लोग आए हैं, कविता लाए हो, बोले हाँ सुनाओ। एक पंडित खड़ा हुआ विद्वान, सुनिए हम भी कवि है, क्या कविता है सुनाओ। भोजनम देहि राजेन्द्र शाक सूप समन्वित माहि संच शरच्चंद्र चंद्रिका धवला दधी। राजा भोजन तो वो तो बड़ा पारखी था, बोले ये कविता तुम लोगों ने लिखी है। हां महाराज पूरी कविता तुम लोगों ने लिखी है। आप तो डरने लग गए, सब सब घबरा गए, ये राजा तो पारखी था कविता का काव्य का, तुम लोगों ने लिखी हो भले लिखा हो लेकिन पुरस्कार पाने का हक तो कालिदास को ही है। ये दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी लाइन तो उत्तरार्ध तो कालिदास ने ही लिखा है, ईमानदार से बोलो हां सरकार क्षमा करना माफ करना है। देखो कालिदास में वो कला थी, इसलिए वो अपना योगक्षेम चला रहा था। शंकराचार्य जी कहते महाराज मुझ में वो कला नहीं है, तो किसी राजा को प्रसन्न करने की वह कला भी नहीं है तो मैं अपने योगक्षेम कैसे चलाऊं। स्मृतौ शास्त्रे वैद्य शकुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्रे वा। और पुराण का ज्ञाता भी नहीं हूं, सब पुराण का ज्ञाता कौन है बोलो, पुराण की व्याख्याता कौन है, कथाकार कौन है, हैं? वेदव्यास कथाकार नहीं है, रचनाकार है। कौन? सुखदेव जी सभी पुराण के व्याख्याता नहीं है, सूत जी। शौनक तो श्रोता है, हाँ सुखदेव जी भी सभी पुराण के व्याख्याता नहीं है, भागवत के व्याख्याता हैं। सभी पुराणों के व्याख्याता कौन है? सूत जी, वेदव्यास जी के परम शिष्य सूत जी। सूत जी तो सभी पुराणों की व्याख्या करते हैं क्योंकि सारे पुराण वेदव्यास से पढ़ा है और व्याख्या करने में बड़े चतुर हैं। अब मैं सूत जी जैसा नहीं हूं, इसलिए पुराण का ज्ञान भी मुझे नहीं है। कथा करो और पैसा कमाओ है, वो कला मुझ में नहीं है। पुराणे मंत्रे वा, मंत्र तंत्र भी नहीं जानता हूं मैं। स्तुति नटन हास्य सुचतुर, ठीक है विद्वान होने के लिए तो ये सारी चीज चाहिए, लेकिन यदि तुम विद्वान नहीं हो तो नाच तो सकते हो? बोले नहीं महाराज मैं नाचना भी नहीं आता है, स्तुति गान भी करना नहीं आता है, है? आप लोगों को यही श्लोक को तुम गाओ कहो तो क्या मेरे स्वर से स्वर मिलाकर गा पाओगे, है घर पाओगे? बुरा नहीं मानना, आप और हम अलग अलग गाने शुरू करें, अलग अलग गाने शुरू करेंगे तो कोयल और गधे की आवाज निकलेगी, बुरा नहीं मानना। हो स्तोत्र कविता गाने की भी स्वर कला है, संगीत की, वो मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरे के लिखी हुई कविता भी गाना चाहिए, गाना आना चाहिए तो उसके स्वर से भी प्रसन्न हो जाएंगे और योगक्षम ऐसे ही चल जाएगा। मुझे वो भी नहीं आता है, तो गाना नहीं आता, नाचना तो आता है मूर्ख, मुझे नाचना भी नहीं आता है। इसलिए हमेशा जब नाचने के लिए मैं खड़ा होता हूं स्टेज टेढ़ा ही होता है, है? नाचने जो नहीं जानते हैं उनके लिए आंगन हमेशा टेढ़ा होता है, नहीं कहा होता है कि नहीं, नाचने नहीं जाने आंगन टेढ़ा है। हास्य कोई चुटकुला भी सुनाने मुझे नहीं आता है, जो चुटकुला सुना के लोगों को मनोरंजन करूं वो भी नहीं आता है मुझे भाई। अचतुरा, ये अचतुरा का सब जगह अन्वय करते जाना है। स्मृत हूं अचतुरा, कुशल नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं आता है चतुरता की तो बातें छोड़ दो। तब मेरे सामने ये संसार के मर्तलोक के मरण धर्म राजा कैसे प्रसन्न होंगे और मेरा योगक्षेम कैसे चलेगा, कौन पालेगा मुझे, कौन देगा मुझे जीने के लिए राशन पानी। स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये सकुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्रे वा स्तुति नटन हास्ये स्वचतुरा कथम राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि। और दूसरी बात, तब जब तक जीवोगे जीने के लिए योगक्षेम की उपलब्धि मुझे कहां से होगी। और दूसरी बात, मैं पशु हूं हाँ, और आप पशुपति हो, मैं पशु हूं आप पशुपति हो। शिवजी ने कहा कि तू पशु कैसे, तू तो मनुष्य है। बोले पशु की परिभाषा आपने क्या किया महाराज, जो पास से बंधा हुआ होता है वो पशु होता है हाँ? पास बद्धो ही पशव पास पंचविधो स्मृतम, ये जो पास से बंधे उसका नाम पशु। और जीवात्मा पांच पासों से बना हुआ होने के कारण हर जीवात्मा पशु है हाँ। और सबसे बड़ा पशु का लक्षण तो यह है कि जो अपने को न जाने वो पशु है, समझ गए कि नहीं। जो अपने को जाने वो पशुपति, जो अपने को न जाने वह पशु। को अहम, मैं कौन हूं ये मुझे पता नहीं है, मैं अपने को नहीं जानता हूं, यही प्रमाण है कि मैं पशु हूं। वेदांत ने यही परिभाषा की है वो, और इसी के चलते आप पशुपति है क्योंकि आप अपने को जानते हो इसलिए पशुपति हो, मैं अपने को नहीं जानता हूं इसलिए मैं पशु हूं। पशु माम सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ हे सर्वशक्तिमान, माम पशुम प्रथित मत्वा जानकर प्रसिद्ध, आप सर्वज्ञ हैं ये बात प्रसिद्धि है, आप सर्वशक्तिमान हैं ये भी प्रसिद्धि है, आप अहेतु का कृपा सिंधु हैं ये भी प्रसिद्धि है। प्रथित का अर्थ प्रसिद्ध, सारे तीनों लोक में आपकी बड़ी प्रसिद्धि है, करुणा वरुणालय अहितुक दया सिंधु कृपा सिंधु हाँ? कृपया पाम माम पालय विभो, ये व्यापक कृपा करके मैं पशु हूं, अपने आप को भी पालने की क्षमता मुझ में नहीं, क्योंकि अपने आप को पालने की क्षमता तो उस पे है जो शास्त्र को जानता है, वो अपनी कला का है, अपनी बात चातुर्यता के, जो नाचने जानता है वो अपनी कला का प्रदर्शन करके योगक्षम करेगा, कोई कविता गान करके करेगा, मुझे कुछ भी नहीं आता है, अज्ञ हूं मैं, को हम, मैं अपने को कुछ नहीं जानता, इसलिए मेरे पालन करने का योगक्षम की जिम्मेवारी हे शिव आप पर निर्भर है, इसलिए माम पालयः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम।